नमस्कार भारत, सोमवार 2 नवंबर, मैं हूं निखिल रंजन। तुर्की में लहराया एर्दोवान का परचम, 5 महीने पहले खोया बहुमत एकेपी के पास लौटा। भारत नेपाल सीमा पर मधेसी आंदोलन के कारण 2.5 महीने से फंसे ट्रक ड्राइवर हालात से परेशान।
ना इधर का सरकार सुन रहा ना उधर का, हम लोग के पास का जो रुपया था खत्म हो गया। अभी एक टाइम खा रहे थे, एक टाइम के लिए सोच रहे।
झारखंड में डायन बताकर 4 लोगों की हत्या, पड़ोसी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर लगा आदिवासी महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप। पाकिस्तान डायरी और अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। तुर्की के संसदीय चुनावों में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी एकेपी ने जीत हासिल की है। राष्ट्रवादियों के दल एमएचपी को भी अंकारा में सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री अहमद दावूतोग्लू ने चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र और उनके लोगों की जीत बताया। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने चुनाव से पहले कहा था कि इस चुनाव से लोगों को राष्ट्रपति तैयब एर्दोवान की बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति को रोकने का मौका मिला है। रूस के जांचकर्ता ने कहा है कि मिस्र में रूस का दुर्घटनाग्रस्त विमान हवा में ही टूट गया था। शनिवार को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 217 रूसी पर्यटक थे और चालक दल के 7 सदस्य थे। फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त के से 163 शवों को निकाल लिया गया है। रूस के अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन कमेटी के विक्टर सोरोचेंको ने कहा कि विमान के टुकड़े लगभग 20 किलोमीटर के इलाके में बिखर गए थे। इसराइल की सरकार का कहना है कि वो देश के तट से नज़दीक मौजूद गैस के भंडार को खोजने के लिए अब काम करेंगे। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस कई करोड़ के डॉलर प्रोजेक्ट में एक अमरीकी कंपनी भी यहाँ से तेल निकालने की कोशिश में थी, जिसके चलते अगर ऐसा होता तो पूरा तेल बाजार उसी कंपनी के जद में आ सकता था। इसी संदर्भ में इसराइल के वित्त मंत्री आरिये देरी ने कहा कि वो इस तरह की आशंकाओं को दूर करने में विफल रहे थे, जिसके चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं। जिसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वित्त मंत्रालय अब उनके अधीन होगा। उन्होंने कहा,
השר דרעי הודיע לי על כוונתו להתפטר ממשרד הכלכלה כדי להשלים את המהלך।
देरी ने मुझे बता दिया है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। मंत्रालय इस बारे में जल्द ही मुझे लिखित में सूचित करेगा और मैं उस आधार पर उस बारे में अपना मत रखूंगा। मुझे यकीन है कि हम देरी जैसे अनुभवी मंत्री के लिए कोई और भूमिका खोज पाएंगे, क्योंकि वो लंबे समय से हमारे पार्टी का अहम हिस्सा रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। पोप फ्रांसिस ने घोषणा की है कि वो अगले साल की शुरुआत में मेक्सिको की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। वेटिकन ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि पोप फ्रांसिस का 8 दिवसीय दौरा 12 फरवरी से शुरू होगा। चर्च ने कहा कि इस दौरे में वो संगठित अपराध और उन शरणार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव पर चर्चा करेंगे जो बेहतर जीवन शैली के लिए अमरीका का रुख कर लेते हैं। इससे पहले पोप फ्रांसिस ने कहा था कि अपराध के मामले में अर्जेंटीना मेक्सिको जैसा होता जा रहा है, जिस पर मेक्सिको ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में रक्सौल की चुनावी सभा में कहा था कि अगर बिहार में उनकी पार्टी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं। तुर्की में राष्ट्रपति तैयब एर्दोवान की पार्टी एकेपी ने चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। माना जा रहा है कि पार्टी अकेले ही सरकार बना सकती है। एक तरफ जहां उनके समर्थक खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने तुर्की के लिए एकेपी की जीत को एक खतरनाक स्थिति बताया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे को लेकर हाजिर हैं अमल चौधरी।
तुर्की की सत्ताधारी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP ने संसदीय चुनावों में जीत हासिल कर ली है। अब जबकि मतों की गिनती का काम लगभग पूरा हो गया है, सरकारी एजेंसी अनादोलू के मुताबिक AKP ने 49.4% वोट हासिल किए हैं। मुख्य विपक्षी दल CHP को 25.4% वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री अहमद दावूतोग्लू ने चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र और उनके लोगों की जीत कहा है। मैं अपने सभी लोगों को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत हमारे लोगों की है, ये जीत हमारे पड़ोसियों और हमारे नागरिकों की है। आज लोगों के लिए जीत का दिन है। उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। हम साथ मिलकर ऐसे ही कई नए इतिहास रचेंगे, तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतोग्लू के शब्द। वहीं इस घोषणा के बाद से कई लोग AKP के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की तारीफ करते हुए उनकी एक समर्थक हायतिस आयदर ने कहा, अर्दवान और उनकी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वाकई बहुत काम किया है। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। एक वक्त ऐसा था जब मेरी जैसी महिला के लिए यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने मेरी और मुझ जैसी कई महिलाओं के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने हर तरह से हम सभी की मदद की। इसके साथ ही उन्होंने व्यावसायिक स्कूलों की भी स्थापना की। AKP पार्टी के समर्थक हायतिस। BBC संवाददाताओं के मुताबिक AKP पार्टी अकेले ही सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। पिछले चुनाव में गठबंधन को नकारने वाली दक्षिणपंथी पार्टी MHP को लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है। उम्मीद से बड़ी जीत का जश्न AKP के मुख्यालय और दूसरी जगहों पर नजर आ रहा है। 5 महीने में ही दूसरी बार चुनाव कर AKP ने बड़ा दांव खेला था, लेकिन फैसला उसके हक में रहा। हालांकि दूसरी तरफ कुर्दों का समर्थन करने वाली HDP ने सीटों पर दावा करने के लिए जरूरी 10% वोट की सीमा हासिल कर ली है, लेकिन वो AKP की इस जीत से खुश नहीं है। HDP के सांसद अर्तुगुलू करकसू ने BBC को बताया कि इस नतीजे से मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। AKP की ये जीत तुर्की के भविष्य के लिए मुश्किल बन सकती है। मुझे लगता है कि AKP तुर्की के दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी ताकतों की पार्टी के तौर पर सामने आई है, जिसका मतलब है कि देश में लोकतांत्रिक सुधारों का दौर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही देश भर में उग्र प्रदर्शन और हिंसा का दौर बढ़ सकता है। HDP के सांसद अर्दगुलू करकसू। तुर्की में 5 महीने में दूसरी बार चुनाव हुए हैं। जून में हुए चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम होने के बाद राष्ट्रपति अर्दवान ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को बहुमत मिला तो स्थिर सरकार बनाएंगे। तुर्की में कुर्द और इस्लामी लड़ाकों के हमलों के बीच सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव में छाया रहा।
तुर्की में राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दवान की पार्टी AKP ने चुनावों में जीत हासिल की। रिपोर्ट सुना रहे थे अमल चौधरी। नेपाल में चल रहे मधेसी आंदोलन से भारत के सीमावर्ती शहर रक्सौल पर भी बड़ा असर हो रहा है। नेपाल के बीरगंज और भारत के रक्सौल में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आंदोलन खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं दिखते। इन सबके बीच सरहद के दोनों ओर फंसे ट्रक ड्राइवरों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव कवर करने गए हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी रक्सौल भी पहुंचे थे और वहां से उन्होंने ये खास रिपोर्ट भेजी है।
बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का रक्सौल इन दिनों अस्त व्यस्त सा लगता है। शहर शुरू होने से पहले ही ट्रकों की लंबी कतार शुरू हो जाती है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में शहर के अन्य हिस्सों में भी नजर आती है। नेपाल के बहुचर्चित मधेसी आंदोलन का असर रक्सौल और नेपाल के पर्सा जिले के बीरगंज में स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन मधेसी आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं पैदल ही सीमा पार करके नेपाल के बीरगंज इलाके में पहुंचा।
करीब 78 दिनों से भारत और नेपाल की इस सीमा से होकर पेट्रोलियम पदार्थों की जो आपूर्ति होती है वो पूरी तरह बंद है। 38 जगह इन्होंने नाकेबंदी की है। तो चलिए हम चलते हैं इस समय नेपाल बीरगंज की ओर, जहाँ पर मधेसी लोग आंदोलन कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो इस समय मैं नेपाल के बीरगंज इलाके में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे कई लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं।
मेरा नाम मिनी सिंह है।
और आपका?
राम सहाय यादव।
क्यों आप लोग इतने दिन से आंदोलन किए हुए हैं?
अब मधेश के जो हक अधिकार है मधेशियों का, आदिवासी जनजातियों का, दलितों का, मुसलमानों का, लगायत अन्य पिछड़ी जातियों का, जो विगत में मधेश आंदोलन के क्रम में 22 बूंदे और 8 बूंदे समझौता हुई सरकार से, उस समझौता को संविधान में, नए संविधान में जो संविधान सभा से बना है, उस संविधान में नहीं स्थापित करने के कारण से, उसमें नहीं लिखने के कारण से, हम लोग उसको पुनः उस संविधान में संशोधन के मार्फत या पुनर्लेखन के मार्फत हमारा मांग को संबोधन करे, और नहीं करने के कारण से हम लोग आंदोलन में हैं।
हालांकि नेपाल सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि देश के संविधान में सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का कहना है कि तराई के लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन सरकार और मधेसी आंदोलनकारियों में तनातनी के बीच भारत के रक्सौल और नेपाल के बीरगंज में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। बीरगंज में तो जैसे जीवन थम सा गया है, महीनों से स्कूल कॉलेज बंद हैं और इसका असर वहां के कारोबार पर भी पड़ा है। ट्रक खड़ा करके स्थिति सामान्य होने की बाट जो रहे ट्रक ड्राइवरों का संयम भी टूट रहा है।
नाम मेरा उपेंद्र यादव है।
आप कहां के रहना?
रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं हम। दिक्कत यह है कि जो गाड़ियां फाइनेंस है किस्त पे हैं, यहां पे दो दो महीना हो गया गाड़ी रुक गई है, यहां पे जैसे गाड़ी जाएगी वो गाड़ी खींचा जाएगी, फाइनेंसर गाड़ी उठा ले जाएगा, और जो हम लोग पैसा इधर लाए थे, पैसा हम लोग को मिला था, वो यहां बैठ करके हम लोग खा गए, ख़त्म हो गया। यहां तक ले दिक्कत यह है कि हम लोग न घर जा सकते हैं न कुछ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारा एक त्यौहार इसी जगह बीत गया है, उसके बाद हमारा सामने छठ पूजा आ रहा है, ये भी त्यौहार हमको लग रहा है इधर ही मनाना पड़ेगा।
ना इधर का सरकार सुन रहा ना उधर का।
आप
दिक्कत है कि हम लोग का पास का जो रुपया था खत्म हो गया, अभी एक टाइम खा रहे थे, एक टाइम के लिए सोच रहे हैं। मेरा दो दो लड़का, एक ठो इंटर में है, एक मैट्रिक में है, उसका फीस नहीं जमा हो रहा, हम यहाँ फंसे हुए हैं, मालिक का गाड़ी नहीं चलेगा, वो पैसा नहीं देगा।
आपका नाम?
हम भगवान सिंह नाम है, कलकत्ता का रहने वाले हैं। हम यहाँ 16 तारीख आए, 24 के खाली हुआ, 24 का नाकाबंदी हुआ, 24 से हम खड़ा हैं। जो भाड़ा हमारा बाकी था उठा के खा गए, अब हम लोग कर्जा काट के दुकान से ले लेके खियाओ भाई, जब आएंगे दूसरा टिप तो देंगे, ऐसा करके खाना हम लोग का। धमकी भी हो रहा है।
कौन धमकी देता है?
देता है सब पब्लिक आदमी, सब कोई है? जब सब कोई
मधेसी लोग दे रहा है।
क्या बोलता है?
जाएगा उधर में गाली जला देगा, काट देगा, मार देगा, गाड़ी में आग लगा देगा।
प्रॉब्लम बहुत हो रहा है।
मधेसी आंदोलनकारी इससे पूरी तरह इनकार करते हैं कि भारत सरकार से उन्हें कोई मदद मिल रही है।
भारत सरकार हमारे तो कोई हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे नेपाल में हो रहा है कि ये नाकाबंदी भारत सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन नहीं, हम मधेसी अपने अधिकार के लिए नाकाबंदी किए हैं, भारत सरकार की तरफ से कोई हमारा हेल्प नहीं है, हम लोग खुद अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाए हैं। अब भारत सरकार, अब शायद सरकार से मिलकर ही कोई ऐसा वार्ता करे, लेकिन हम आंदोलनकारी भारत सरकार कोई सहायता नहीं है।
मधेसी आंदोलन कब तक खींचेगा? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सहमति हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच सरहद के दोनों ओर ट्रक ड्राइवरों के भी सब्र का बांध टूट रहा है। पंकज प्रियदर्शी, BBC रक्सौल।
भारत नेपाल सीमा से पंकज प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इधर झारखंड में कथित तौर पर डायन होने के शक में दो महिलाओं समेत चार लोगों की हत्या कर दी गई है। राज्य में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। पूरे ब्यौरे के साथ रांची से रवि प्रकाश।
डायन बिसाही के मामले में हत्या की न तो यह पहली घटना है न आखिरी। झारखंड में हर महीने किसी न किसी की हत्या इस आरोप में कर दी जाती है। यह मामला कुचाई थाने का है। यहाँ के सोसो कला गांव के श्यामलाल मुंडा को शक था कि उसके एक साल के बेटे की मौत की वजह डायन बिसाही है। इस शक में उसने अपनी पड़ोसी महिला और उसके दो बेटों और एक बेटी की हत्या कर दी। सरायकेला खरसावां के इंद्रजीत महता ने BBC को बताया कि
देखिए, आज जो है चाई थाना अंतर्गत एक सोसोकला गांव है, जिसमें दो भाई हैं, राम राय सिंह मुंडा और श्यामलाल मुंडा। उन्होंने रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में अपने पड़ोसी के घर में जाके सोए हुए चार लोगों को मतलब फरसा से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इसमें दो महिलाएं थी, दो पुरुष थे। बाद में जब उनसे इंट्रोगेट किया गया तो उन्होंने बताया कि कल उनके एक बेटे का, श्यामलाल मुंडा के बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो बीमारी के कारण इसके कारण उनकी हत्या हुई है। इसी आक्रोश में आके उन्होंने रात में जो है ये हत्या की और बगल के चौकीदार को सूचना दी और फिर ये लोग जो है सरेंडर कर, इनके कंसेशन के आधार पे उनके द्वारा जो हथियार है उसको बरामद कर लिया गया।
दरअसल डायन को लेकर अंधविश्वास के पीछे यहाँ की सामाजिक बनावट भी जिम्मेवार है। युवा पत्रकार और दैनिक भास्कर रांची के संपादक अमरकांत का मानना है कि लोगों को जागरूक कर इस कुप्रथा पर काबू पाया जा सकता है।
आदिवासी बहुल राज्य ग्रामीण इलाकों के लोगों परंपरागत व्यवस्था के तहत अंधविश्वास की पैठ जरा गहरी होती। कई बार लोग डायन विषहीन जैसे मामलों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कोई मौत या कोई बीमारी इस डायन विषही के कारण हो रहा है। डायन विषही के आड़ में लोग जमीन विवाद या दूसरे कोई आपसी झगड़े आपसी मनमुटाव में भी रंजिश निकाल लेते हैं। सरकार लगातार इसको लेकर के प्रयास तो कर रही है, वो में जागृति फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो नाकाफी है और उसी का नतीजा इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आता है।
डायन होने के संदेह में मारे जाने वाले लोगों में अधिक संख्या महिलाओं की है। इनमें वैसी महिलाएं अधिक हैं जिनका कोई सगा संबंधी नहीं है। गैर सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट पर यकीन करें तो साल 1991 में झारखंड बनने के बाद से अभी तक 950 से अधिक लोगों की हत्या डायन होने के संदेह में कर दी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल 49 और इस साल आज की तारीख तक करीब 30 लोगों की हत्या ऐसे मामलों में की जा चुकी है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों पर आदिवासी महिलाओं और बच्चियों के साथ कथित बलात्कार, यौन प्रताड़ना और उनके घरों में लूटपाट का मामला सामने आया है। कुछ महिला और मानवाधिकार संगठनों के हस्तक्षेप के बाद रविवार को इनमें से 4 पीड़िताओं ने बीजापुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। इनमें 15 साल की एक किशोरी भी शामिल है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट सुनिए।
बीजापुर जिले के बड़ागुड़ा थाना के चिन्नागेलूर, पेदागेलूर, गोदेम और भुर्गी चेरू जैसे कई गांवों की महिलाओं ने रविवार को जिले के कलेक्टर और एसपी के समक्ष आरोप लगाया कि पिछले महीने की 19 से 22 अक्टूबर के बीच सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने माओवादियों की तलाशी के नाम पर घरों में घुसकर लूटपाट की। आरोप है कि जवानों ने घरों से पुरुष सदस्यों को बलपूर्वक बाहर निकाला और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। पीड़ितों में 15 साल की एक किशोरी भी शामिल है। महिलाओं का आरोप है कि इन जवानों ने पुरुषों और महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और लोगों से नकदी और उनके गहने भी लूट लिए। कुछ महिला और मानवाधिकार संगठनों के हस्तक्षेप के बाद बीजापुर पहुंची इन पीड़िताओं में से 4 महिलाओं ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल के जवानों ने कई दूसरे गाँवों में भी ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया है। इन पीड़ित महिलाओं का नेतृत्व कर रही आम आदमी पार्टी के नेता सोनी सोरी का कहना है,
पर ये जो बीजापुर जिले में जो क्रूरता से जिस तरह से इन्होंने जो एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, उनको बहुत करीब से मैंने पूछा और एक को जो एक बलात्कार के जब दौरान उस समय उसकी डेथ हो गई है और भी जो गर्भवती महिला उनके साथ किया है, जैसे जो छेड़छाड़ अंगों से किया, ये इतनी क्रूरता है। लेकिन अब ये लड़ाई जंग जारी होगी।
लेकिन बस्तर इलाके के आई जी पुलिस SRP कल्लूरी से जब हमने इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने पूरे मामले से ही अनभिज्ञता जताई।
अब तक मेरे जानकारी में कुछ भी नहीं, जो भी उनका आरोप है लिखित में SP को दे सकते हैं, हम FIR कायम करवा के जांच करेंगे।
मानवाधिकार संस्था लोक स्वतंत्र संगठन यानी PUCL के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बस्तर में आम हो गई हैं।
ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कई सालों से जो भी फोर्स है वो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनके ऐसे ही हनन करते रहे हैं। कभी किसी मारा जाता है, आदिवासी है, इनोसेंट है, और ना उनकी FIR दर्ज होती है, और FIR दर्ज हो भी जाती है तो उन्हें नक्सली बता दिया जाता है और नकली हथियार, नकली तरह की चीजें उन्हें बरामद भी कर ली जाती है।
लाखन सिंह का आरोप है कि ऐसे मामलों में आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा आदिवासियों को ही फंसा दिया जाता है।
ये ऐसा आज से नहीं, पिछले 7-8 साल से लगातार हो रहा है। नक्सल के नाम से छत्तीसगढ़ के जेलों में कई 100 आदिवासी यूथ बंद है, उन्हें तारीखों पर नहीं भेजा जाता, उन्हें गवाहियां नहीं होती हैं, कई साल के बाद 4-5 साल के बाद रिहा भी कर दिया जाता है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर 5 साल बाद छूटे हैं और 5 साल बाद जो अगर उनको अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो किसी जिम्मेदारी फिक्स भी नहीं की जाती।
फिलहाल बीजापुर की इस घटना के बाद बस्तर में सुरक्षा बल की कार्रवाइयों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। संकट ये है कि जिन अधिकारियों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी है उनमें से अधिकांश ऐसे मामलों को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। यही कारण है कि आदिवासियों की शिकायत फाइलों में बंद होकर रह जाती है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
नमस्कार भारत, BBC रेडियो की पहली सभा आप सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ। और अब आज सुबह के अखबारों में क्या कुछ छपा है ये जानकारी हासिल करके आ चुके हैं अमल चौधरी।
जी निखिल, आज के अखबारों की बात करें तो सभी में वित्त मंत्री अरुण जेटली का जो बयान है वो छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए कहा है कि मोदी ही इस देश में सबसे ज़्यादा इसके असहिष्णुता के शिकार हुए हैं। इसके साथ ही छोटा राजन को इंडोनेशिया को वापस लाने के लिए इंडोनेशिया जो टीम रवाना हो चुकी है वो भी पहले पन्ने पर अधिकतर अखबारों में छाई हुई है। और अगर अन्य खबरों की बात करें तो दैनिक जागरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 84 के दंगों में इंसाफ होता तो गुजरात जैसा दंगा नहीं होता।
कल उन्होंने कुछ इनको मुआवजे की
जी उनको मुआवजा भी बांटा है, काफ़ी लोगों को उन्होंने मुआवजा दिया है, जिसकी भी खबरें काफ़ी अखबारों में हैं। और वहीं RSS का बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाना प्राथमिकता रहेगी। वहीं दैनिक भास्कर ने एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें भारत को 7वां सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाला देश बताया गया है। इसमें कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट है, जिसके हवाले से ये खबर लगभग सभी अखबारों में प्रकाशित की गई है। वहीं घरेलू गैस के दाम 29 रुपये बढ़ने की भी खबर है निखिल, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ना तो तय है।
बहुत बड़ी
जी 29 बिल्कुल बिल्कुल जी। और वहीं नई दुनिया में खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें बच्चे के 1 रुपये मांगने पर मध्य प्रदेश की मंत्री हैं कुसुम सिंह महदेले, जिसने और कथित रूप से उन्होंने उस बच्चे को लात मार दी, और उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने भी उस बच्चे को किनारे ऐसे हटा दिया। हालांकि जी टीवी पर काफ़ी चल रही थी, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी उनके उनकी जानकारी में नहीं, उन्होंने इससे पूरी तरह से इनकार कर दिया निखिल। और वहीं अमर उजाला में खबर है कि ब्रिटेन की जेलों में मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों पर लगाया है जजिया कर। और वहीं एक और खबर है कि चीनी रोबोट ने 134 किलोमीटर चलकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और ये जो सफ़र है उसने लगभग 54 घंटे में पूरा किया है। और वहीं एक चम्मच चीनी से 80 घंटे बिजली बनाई जा सकती है, और अगर आपके पास तरीका है निखिल तो आप भी अपने घर में 80 घंटे की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।
बहुत काम की खबर बताई है आपने, बहुत शुक्रिया अमल चौधरी अखबारों की इस समीक्षा के लिए। और अब आज सोमवार है, आप सबको इंतज़ार होगा पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी का, तो सुन लेते हैं।
डरो उस समय से जब राजनीति नाक का मसला हो जाए और नाक बचाने के लिए गालम गलोच कोसनों बद्दुआओं तक बात आ जाए, वोटरों को डराया जाए कि हमें ना जितवाया तो भगू आ जाएगा और तुम्हें काट खाएगा, और सोते जागते में सपने डसने लगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, अगर मैं हार गया तो स्पष्ट हो जाएगा कि यही वो साजिश थी जो मेरे विरोधियों और मतदाताओं ने मिलकर रचाई। ये पृष्ठभूमि मुझे इसलिए आपके सामने रखनी पड़ रही है कि हमारे खान साहब इमरान खान ने देश के सबसे बड़े दो सूबों यानी पंजाब और सिंध में 2013 के आम चुनाव से लेके पिछले महीने के लाहौर बाई इलेक्शन और अब नगर पालिकाओं के चुनाव तक हर मौके पे अपने भाषणों, धरनों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ऐसा तासुर दिया कि बस तहरीक इंसाफ का सुनामी सब कुछ बहा के ले जाएगा, और अगर हम हार गए तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा, नवाज शरीफ और जरदारी जैसे भ्रष्टाचारी देश को नोच नोच के खा जाएंगे। मगर हर बार खान साहब की पार्टी नंबर दो रही और खान साहब के मिजाज पहले नंबर पे। दो दिन पहले पंजाब और सिंध में नगर पालिकाओं के चुनाव के पहले मरहले में जब 20 जिलों के नतीजे आए तो अगर मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग ने 1000 सीटें जीती तो तहरीक इंसाफ ने 150। यही हाल सिंध में भी हुआ और जरदारी की पीपल्स पार्टी फिर छा गई। मगर वो खान साहब ही क्या जो हार मान लें, अब कह रहे हैं कि हम खोज लगाएंगे कि धांधली के लिए विरोधियों ने क्या क्या नए तरीके इस्तेमाल किए और अगले चुनाव में हम अपने दुश्मनों को तहस नहस करके रख देंगे। वो जो कहते हैं कि खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है, तो इस प्रकार मुझे तो सीमा पार की BJP भी अपनी तहरीक इंसाफ जैसी टिपाई देने लगी है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बनाने के बावजूद इमरान खान ये सोच सोच हलकान हो रहे हैं कि पंजाब ना जीता तो फिर क्या जीता, उसी तरह BJP सोच में पड़ी हुई है कि बिहार ना जीता तो केंद्र में रहने का भी क्या फ़ायदा। इस हिसाब से मुझे तो बिहार का नीतीश कुमार भी अब पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ जैसा लगने लगे हैं और लालू जी में जरदारी की छवि साफ नजर आ रही है। अमित शाह की BJP बिल्कुल इमरान खान की तहरीक इंसाफ की तरह धाड़ रही है, हमें वोट नहीं दोगे तो बिहार अंधेरे में डूब जाएगा, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, ए बिहारियों पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर के हो जाओगे। لیکن جس طرح پنجاب اور سندھ واسی عمران خان کا نیا پاکستان خریدنے پہ تیار نہیں، اسی طرح بہار واسی اچھے دنوں سے بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے پھر تو بہار کے چناؤ نتیجوں پہ پاکستان میں پٹاخے پھوٹے ہی پھوٹے۔
پاکستان سے وسعت اللہ خاں کی یہ ڈائری آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کی پرتکریاؤں کا انتظار رہے گا۔ اور اب ان خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں جن پر آج پورے دن ہماری نظر رہے گی۔
فرانس نے بھارتی ناگرکوں کو بایو میٹرک ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے جو آج سے شروع ہوگا۔ فرانسیسی دوتاواس نے ایک پریس ریلیز جاری کر یہ جانکاری دی، حالانکہ انہوں نے صاف کیا کہ اس سے پہلے جاری کیے گئے ویزا بھی مانیہ ہوں گے۔ نئی دلی میں بھارت اور ناروے کے سنیکت آیوگ کی بیٹھک ہوگی، اس میں بھارتی ودیش منتری سشما سوراج اور ناروے کے ودیش منتری بورگ برینڈ حصہ لیں گے۔ اس دوران دونوں دیش ہائیڈرو کاربن، بنیادی ڈھانچے اور سمندری سرکشا جیسے اہم مدعوں پر چرچا کریں گے۔ ودیش منترالے نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس کی جانکاری دی۔ چینی پردھان منتری لی کیچیانگ، جاپان کے پردھان منتری شنزو آبے اور دکشن کوریا کے راشٹرپتی گوین ہے کے بیچ تری پکشیہ وارتا ہوگی۔ دکشن کوریا کی راجدھانی سول میں ہونے والی اس وارتا میں ادیوگ، ارجا اور تینوں دیشوں کے سمبندھوں کو بہتر کرنے پر چرچا کی جائے گی۔ فرانس کے راشٹرپتی فرانسوا اولان دو دیوسیہ یاترا پر چین پہنچیں گے، اس دوران وہ چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔
اور اب آدیش کمار گپت سے سنتے ہیں آج کے کھیل سماچار۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ بھارت کی اسٹار مہیلا ٹینس کھلاڑی اور مہیلا یگل ورگ میں دنیا کی نمبر ایک رینکنگ والی ثانیہ مرزا اور ان کی جوڑی دار سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس نے سنگاپور میں آیوجت ہوئے ڈبلیو ٹی اے فائنلز کا فائنل جیت لیا ہے۔ مہیلا یگل ورگ کے فائنل میں کل انہوں نے اسپینش جوڑی گاربینے مگوروزا اور کارلا سواریز نوارو کو 6-0, 6-3 سے مات دی۔ اس سال ثانیہ مرزا اور مارٹینا ہنگس نے مل کر یہ 9ویں خطابی جیت حاصل کی، اس میں ومبلڈن اور امریکی اوپن کے مہیلا یگل خطاب بھی شامل ہیں۔ ثانیہ مرزا اور مارٹینا ہنگس نے خطابی جیت کے روپ میں لگاتار 22ویں جیت حاصل کی۔ ویسے ثانیہ مرزا نے لگاتار دوسری بار ڈبلیو ٹی اے فائنلز کا فائنل جیتا، پچھلے سال خطابی جیت میں ان کی جوڑی دار کارا بلیک تھی۔ وہیں مہیلا ایکل ورگ کا خطاب 5ویں وریتا حاصل پولینڈ کی اگنیسکا رادوانسکا نے اپنے نام کیا۔ فائنل میں انہوں نے 4th وریتا حاصل چیک گنراجی کے پیترا کیوٹووا کو 6-2, 4-6, 6-3 سے ہرایا۔ ادھر شطرنج کی بساط پر اسپین میں جاری بلباؤ ماسٹرز فائنل شطرنج ٹورنامنٹ میں موجودہ چیمپئن وشواناتھن آنند نے 5ویں دور میں امریکہ کے ویسلی سو سے اپنی بازی ڈرا کھیلی۔ اس کے ساتھ ہی وشواناتھن آنند کے لیے اپنا خطاب بچائے رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب نیدرلینڈز کے انیس گیری اور امریکہ کے ویسلی 7-7 انکوں کے ساتھ شیرش پر ہیں، جبکہ وشواناتھن آنند اور چین کے لیرین ڈنگ کے 4-4 انک ہیں اور اب کیول ایک دور کا میچ ہی بچا ہوا ہے۔ وہیں شارجہ میں کل سے پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ تیسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوا، جہاں پاکستان نے پہلے دن ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کپتان مصباح الحق کو چھوڑ کر ان کا کوئی بھی بلے باز انگلینڈ کے تیز گیند باز جیمز اینڈرسن اور اسٹوئرٹ براڈ کا سامنا نہیں کر سکا۔ مصباح الحق نے کپتان کی ذمہ داری بھری پاری کھیلتے ہوئے 160 گیندوں پر 7 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے 71 رن بنائے۔ ان کے علاوہ وکٹ کیپر سرفراز احمد نے 39، شعیب ملک نے 38 اور یونس خان نے 31 رنوں کی اپیوگی پاری کھیلی۔ انگلینڈ کے تیز گیند باز جیمز اینڈرسن نے کیول 17 رن دے کر 4 اور اسٹوئرٹ براڈ نے 13 رن دے کر 2 وکٹ حاصل کیے۔ کل اسٹمپ کے سمے انگلینڈ کا اسکور بنا کسی نقصان کے 4 رن تھا۔
اور اب کارکرم کے آخر میں سن لیتے ہیں پرمکھ سماچار ایک بار پھر۔
بی بی سی سماچار۔ ترکی کے سنسدیہ چناؤں میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اے کے پی نے جیت حاصل کی ہے۔ راشٹروادیوں کے دل ایم ایچ پی کو بھی انکارا میں سیٹیں ملی ہیں۔ روس کے ایک جانچ کرتا نے کہا ہے کہ مصر میں روس کا درگھٹنا گرست ومان ہوا میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ومان کے ٹکڑے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے علاقے میں بکھرے ہوئے تھے۔ اسرائیل کی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ دیش کے تٹ کے نزدیک موجود گیس کے بھنڈار کو کھوجنے کے لیے اب کام کریں گے۔ اسی سندرب میں اسرائیل کے وت منتری آریہ دیری نے کہا کہ وہ اس سے جڑی آشنکاؤں کو دور کرنے میں وفل رہے تھے، جس کے چلتے وہ اب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ پوپ فرانسس نے گھوشنا کی ہے کہ وہ اگلے سال کے شروعات میں میکسیکو کی اپنی پہلی آدھکارک یاترا کریں گے۔ ویٹیکن نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ پوپ فرانسس کا 8 دیوسیہ دورہ 12 فروری سے شروع ہوگا۔ चर्च ने कहा कि इस दौरे में वो संगठित अपराध और उन शरणार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव पर चर्चा करेंगे जो बेहतर जीवन शैली के लिए अमरीका का रुख करते हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में। आज तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं हेमंत कुशवाहा, अमल चौधरी और निखिल रंजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।